पूर्णिमा जी, SBS के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको नमस्कार।
नमस्कार
पूर्णिमा जी, विनोबा भावे जी के सर्वोदय आंदोलन में एक कार्यक्रम था भूदान, और उसके अग्रिम नेता थे दादा आर.के. पाटिल, और आपने उनके व्यक्तित्व पर एक किताब लिखी है। पूछना चाहूंगी कि दादा पाटिल ही क्यों?
जी, दादा का व्यक्तित्व बड़ा प्रासंगिक था। वो किसी भी परिस्थिति में, कोई भी समय पर यदि उनके बारे में यदि बताया जाए, लिखा जाए, तो लोगों को प्रेरणा ही मिलेगी, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में एक जनसेवक के रूप में एक त्याग भरा ऐसा कार्य किया है जो सबके लिए आदर्श रहा है
जी।
और आज की परिस्थिति में जब चारों ओर भ्रष्टाचार है, चारों ओर लोग निराश हैं, ऐसे वक्त पर यदि दादा जैसे विराट व्यक्तित्व, आदर्श व्यक्तित्व, एक सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व के बारे में यदि लोगों को पता चले, खासकर हमारे नवयुवक यदि इस बारे में जाने, तो मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्यपूर्ण एक ऐसा कार्य होगा जो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बन सके। बस ऐसी ही कुछ ऐसे मन में बात आई और मैंने दादा पे लिखना शुरू करा।
जी, उनके लिए कहा जाता है कि बड़े ही नम्र स्वभाव के थे, बहुत ही भावुक स्वभाव के थे, भारत की राजनीति के साथ जुड़े हुए थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि वो ऐसे आज के राजनीतिक जैसे नहीं थे। असल में उनके समय के वो कई नेता ऐसे थे जिनमें पूरी की पूरी देश सेवा भरी हुई थी, और वो देश सेवा ऐसी थी कि ऐसे समय पे उन्होंने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की थी, यहाँ तक कि खुद की परवाह नहीं की थी। और उनके जेब में तो त्याग पत्र रखा हुआ रहता था, जहां सिद्धांतों से उनका टकराव होता था तो वे तुरंत, चाहे वे कोई भी ओहदे पर हों, उस ओहदे से जुड़ा मान सम्मान, शोहरत, रुपया, पैसा, कुछ भी उन्हें मिल रहा हो, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। जनसेवा के नाम पर कभी भी इसका फायदा उठाना नहीं चाहते थे, जो आजकल हम देखते हैं कि जनसेवा सेकेंडरी हो गई है और दुय्यम हो गई है, लेकिन लोग खुद की सेवा की परवाह पहले कर रहे हैं, तो इसलिए वो आज के राजनीतिक से थोड़े हटकर थे
जी।
और दूसरी बात अनीता जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि दादा को हम कह सकते हैं, दादा आर.के. पाटिल को राजनीति में एक संत की भांति थे। वे बहुत संवेदनशील थे, परंतु संवेदनशील होने के साथ वे काफी दृढ़ थे। मतलब अपने सिद्धांतों के लिए वे कितना भी संघर्ष करने को तैयार रहते थे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी नेता को, किसी को भी यदि नाराज करना पड़े तो उसकी वे परवाह नहीं करते थे। इतनी दृढ़ता, कोमल थे, परंतु जहां होना चाहिए लोगों के प्रति जो मांगे रहती हैं लोगों की, कि उनको कपड़ी, रोटी और मकान मिले, तो इस तरह की जो चीजों से जुड़कर जो दया है वो उनमें जरूर थी कि उनके लिए वो कार्य करेंगे, लेकिन अपने जो उसूल हैं उसके साथ वे कभी, उन्होंने आज तक कोई समझौता नहीं किया था और जीवन के अंत तक वे वैसे ही बने रहे। यहाँ तक कि उनके बारे में, जैसे वो जब प्रशासनिक क्षेत्र में, जब वो ICS ऑफिसर थे और कलेक्टर कमिश्नर बने, वे इंग्लैंड से ICS करके आए थे, और उस समय के जो तीन ICS, एक HV कामत थे
जी,
सुभाष चंद्र बोस थे और श्री आर.के. पाटिल थे
जी,
ये तीन ICS ऑफिसर लोगों ने देश सेवा के लिए, देश प्रेम के चलते अपने इस्तीफे दे दिए थे देश के खातिर। तो इस तरह के उनके पास तो इतना बड़ा ओहदा था, अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए थे, ऐसे निर्भीक प्रशासनिक ऑफिसर वो थे कि खुद अंग्रेज उनका लोहा मानते थे, और वो मतलब कई बार मिस्टर आर.के. पाटिल हेड्स ऑफ बोल के अपनी कैप अपनी निकाल कर उनके सामने रखते थे, ये बोलकर कि आपने कितना अच्छा निर्णय लिया, लेकिन ऐसा हुआ है। खादी के वस्त्र पहनकर जाते थे, क्योंकि दादा ने हमेशा खादी को वस्त्र नहीं विचार माना है, और उन्हें हमेशा लगा है कि खादी के वस्त्र ने उनका मनोबल हमेशा बनाए रखा।
आर.के. पाटिल जी ने सब लोग दादा पाटिल के नाम से जानते हैं, तो हम भी उन्हें दादा पाटिल ही कहेंगे।
जी हाँ।
स्वतंत्र भारत में वो सरकार का हिस्सा भी बने, तो सबसे पहले ओहदा उन्होंने क्या संभाला था?
जी वे फूड मिनिस्टर बने थे
जी।
और उसमें उनके कार्य जो थे वो इतने अच्छे हुए थे कि नेहरू जी भी खुशी से उनसे पूछने लगे थे कि क्या बात है पाटिल साहब, इस साल तो फसल बहुत अच्छी हो रही है, जब से आप अन्न मंत्री बने आपने क्या किया। तो जैसे कि दादा कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं करते थे, तो वे उन्होंने कहा कि बस ऐसा कुछ हुआ कि वर्षा बहुत हो गई इसलिए अन्न ज्यादा हो गया। तो इस तरह की कुछ बातें हैं और कई किस्से हैं जो कि दादा को दगड़ मंत्री भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि कुछ अकाल टाइप हो रहा था और लोगों को कई तरह की चीजें खाने को नहीं मिल रही थी। तब दादा ने जो चावल का एक बहुत मोटे मोटे जो चावल रहते हैं जिसको दगड़ बोलते हैं, तो ऐसे दगड़ मंत्री इसलिए उन्हें कहा गया कि उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप इस तरह की चीजें खाइए जो आसानी से मिल रही हैं। और बाद में तो ऐसा हो गया कि आज के जमाने में जिसे हम ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं, असल में ये वही चीज थी, पर तब लोग पॉलिश्ड चीजें खाने लगे थे और दादा ने तब ये चीज इस तरह से अन्न मंत्री के नाते लोगों के बीच पहुंचाई थी, तो वो दगड़ मंत्री के नाम से भी काफी प्रसिद्ध हुए थे तब।
जी। और अगर भारत के विकास की बात करें और भारत की जो विकासशील योजनाएं थी वो पंचवर्षीय योजना के साथ भी जुड़े रहे, कह सकती हूँ कि ये उनकी देन थी।
जी मतलब उसमें उन्होंने काफी अच्छे कार्य किए, वो तो जिस भी क्षेत्र में रहे सभी में उनके कार्य की चर्चा रही है, पूरे जो उनका मंत्रिमंडल है उनके द्वारा बनाई हुई ये चीज थी। परंतु हुआ ये था कि दादा जब मिनिस्टर थे और जैसा कि मैंने आपको बताया है सिद्धांतों से जब टकराव होता था तो वो तुरंत उस ओहदे को छोड़ देते थे। ऐसे फूड मिनिस्टर रहे ये रहे जैसा मैंने आपको बताया उन्होंने वो छोड़ दिया था, लेकिन नेहरू जी ने उनमें जो चीज देखी थी तो वे नहीं चाहते थे कि उनके मंत्रिमंडल का एक इतना योग्य मंत्री इतना कुशल मंत्री किसी भी तरह से उनके मंत्रिमंडल से चले जाए। अच्छा। तो उन्होंने उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था कि वो श्री आर के पाटिल को मनाए और उन्हें कहें कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें वे आए और उसके वो सदस्य बने। तो इस तरह से वो दिल्ली गए और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें वे शामिल हुए। और उस समय की एक बहुत सुंदर चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें कि नेहरू जी गुलजारी लाल नंदा और श्री आर के पाटिल बैठे हुए हैं और वो पंचवर्षीय योजना पे कार्य कर रहे हैं।
जी। फिर वो विनोबा भावे जी के सर्वोदय आंदोलन के साथ कैसे जुड़ गए?
अनीता जी पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू जी ने जैसे उन्हें कहा कि आप भूमि वितरण को लेकर कुछ योजना बन रही है तो जाके आप विनोबा जी से मिलिए और उन्हें भी बताइए कि इस तरह की योजना सरकार बना रही है। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजना के भूमि वितरण कार्यों को लेके दो दो तीन तीन बार वो बार बार पवनार आ रहे जा रहे थे और विनोबा जी से मिल रहे थे
जी।
इस दौरान दोनों ही जैसा कि मैंने आपको कहा है कि वो राजनीति के संत थे तो कुछ कहीं ना कहीं दोनों के मन जुड़ने लगे मिलने लगे और ऐसा लगने लगा कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते जा रहे हैं इन मुलाकातों के दौरान। तो विनोबा जी ने मालूम नहीं क्या दादा में ऐसा देखा कि उन्हें लगा कि यदि दादा सर्वोदय को यदि ज्वाइन करते हैं तो वो लोगों के लिए जनता के लिए और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता के लिए ही कार्य करने के लिए मिनिस्टर भी बने मंत्री बने प्रशासनिक सेवा में गए
जी।
और आज पंचवर्षीय योजना में भी वो उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि सरकार के साथ रहकर वो जितना कार्य नहीं कर पा रहे हैं उतना सर्वोदय के साथ जुड़ के कर पाएंगे और यह बात उन्होंने दादा से कही और दादा को यह बात बहुत पड़ गई। तो दादा ने कहा विनोबा जी बस मेरे को अभी एक कृषि योजना के अंतर्गत एक यात्रा पे जाना है इसराइल, जब उस यात्रा को पूरी करके मैं वापस आता हूँ, क्योंकि मैं नेहरू जी को बता चुका हूँ कि मैं उसका प्रतिनिधित्व करूंगा उस यात्रा का, जब वो यात्रा मेरी हो के मैं वापस लौटूंगा तो जरूर मैं सर्वोदय को ज्वाइन कर लूंगा और मैं हमेशा के लिए अब राजनीति से दूर हो जाऊंगा।
एक बहुत ही समर्पित कार्यक्रम था और जिसमें वो व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ गए कि भूमिदान उन्होंने पहले ये करके दिखाया।
जी हाँ जी। उनके कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहता था और कथनी और करनी के अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपनी 200 एकड़ जमीन दान में दी और उसके पश्चात वे लोगों से गरीबों के लिए जमीन मांगने भूमिहीनों के लिए जमीन मांगने निकल पड़े।
जी, तो पूर्णिमा जी, दादा के प्रति जो लोगों के विचार थे वो आपने जिस तरह से इस पुस्तक में समेटा है उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक भी देना चाहूँगी। और बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आई हैं और आपने ये सारी बातें हमारे साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूँगी।
धन्यवाद अनीता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे श्रोता दादा की बात को जानेंगे। ये एक बहुत ही ऐसा व्यक्तित्व है जो मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए भी ये एक आदर्श है। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा SBS को और अनीता जी आपको। धन्यवाद।